अब उसको एक्स्ट्रा डाइट किया गया है और सो क्विकली के दो चार कालों के ऊपर, तो इससे पता चलता था कि कोई नेटवर्क काम कर रहा है।
समथिंग
जी, समथिंग इज गोइंग ऑन, ब्रूइंग अप। सेकंडली ये है कि उसमें आप ये देखें कि जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, उसमें 5 मिनट में, मतलब है जिस तरह आशिफ साहब ने फरमाया कि भाई वो 5 मिनट के बाद FIR इतनी जल्दी, मतलब है कि कवर करना। और तीसरा यह है कि भाई इंडियन मीडिया का, इंडियन मीडिया हमेशा से एक बात ये माननी पड़ेगी कि दे वो इस वक्त मोदी के आने के बाद वही इंडियन मीडिया जिसे हम ये कहते थे कि दे आर मोर इंडिपेंडेंट एंड दे आर मोर वोकल, मुझे मेरा बिल्कुल उस मामले में अकीदा बदल गया है
सर आपका,
तो वो बिल्कुल दे आर फर्स्ट इंडियन और वो भी एक्सट्रीम नेशनलिस्ट इंडियन। हमारा मीडिया जो है वो उसकी दूसरी खराबियां हो सकती हैं, लेकिन वो अपने आप को इंडिपेंडेंट शो करने के लिए हम लोग जो है वी गो एक्स्ट्रा लेंथ टू प्रूव अवर सेल्फ, और उसमें हम अपनी नेशनल जो कॉज है उसको पीछे रखते हैं। आप देख लें, जैसे उन्होंने बताया कि भाई मीडिया कर क्या रहा है, मीडिया यही कर रहा है। और मोदी साहब की ये जो प्लानिंग है, जयशंकर जो हैं उनसे मेरी कई दफा मतलब आमने सामना हुआ है, रांदेवू हुआ है, डिसएग्रीमेंट भी हुआ है, तो वो बिल्कुल मुझे जो है किसी तरह से इंटरनेशनल डिप्लोमेट से ज्यादा जो है पढ़े लिखे हैं बहुत, लेकिन वो जो है वो ज्यादा मोदी की जो पॉलिसी एक्सट्रीमिस्ट है उसके फॉलोअर है।
एग्जैक्टली, दिस इज अ ग्रेट थिंग, ही इज अ नेशनलिस्ट एंड ही इज RSS के पक्के मेंबर है, ही वर्क्स फॉर इंडिया एंड दैट्स व्हाट दे वांट टू मेक इंडिया। मेरा आप दोनों से एक जो मैं बात करना चाहती हूं कि ये जो वाकया हुआ है, पहलगाम का वाकया हुआ है, मुझे लगता है क्योंकि बलूचिस्तान में इतने वाकयात हो गए थे और लोगों की तवज्जो उस साइड पे जाना शुरू हो गई थी, उस तवज्जो को डाइवर्ट करने के लिए पहलगाम का वाकया होता है और 5 मिनट, आई माइट बी रॉन्ग जी।
देखिए इसमें जो है, क्योंकि मैं तकरीबन सारी गवर्नमेंट से ज्यादा भुट्टो साहब के फैसले के आज तक डील करता आया हूं, मैंने बार बार मुशर्रफ से, बेनजीर से, नवाज शरीफ से ये बात किया, क्योंकि वो चुप करके डोजिए लाते थे कि जी इंडियन इंसर्जेंसी कहां है। डोजिए जो है ये दिस इज द मोस्ट डोसाइल एंड मोस्ट फ्लूइड काइंड ऑफ, मतलब कि डोजिए कि मैं आपसे कह दूं कि देखें आप इस तरह से मुझे देख रही हैं अच्छा नहीं लगता, इसका कोई सब्सटेंस नहीं है। और वो भी खुफिया होते थे, खुफिया का मतलब यह है कि उसको जितनी दफा मैंने मांगा कभी उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया, बल्कि मुशर्रफ साहब से एक दो इंटरव्यू के बाद मैंने कहा जी जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है, इंडिया हर बात का आपको ब्लेम करता है, अक्यूज करता है, आपने किया है या नहीं किया, दोनों सूरतों में आप कम से कम वो जो डोजिए है अंदर लाके आप दाखिले दफ्तर जो अकवाम मुतहदा में करते हैं, स्टेट डिपार्टमेंट में करते हैं, उसको बाहर की तो भी तो मतलब है कि दिखाएं। उन्होंने कभी पाकिस्तानी मीडिया को ये नहीं बताया कि उसमें क्या लिखा गया, मलिया लोधी उस जमाने में थी,
दे कीप एवरीथिंग हिडन,
कीप हिडन
बिकॉज दे आर दे डोंट हैव अ स्ट्रेटजी। आप क्या फरमाएंगे इसके बारे में?
जी मैं बिल्कुल ये बात बिल्कुल ठीक है, और मैं एक्चुअली वेरी प्राउड कि जी पाकिस्तान ने बड़ी संजीदगी, बड़े तदब्बुर का मुजाहरा किया, ना सिर्फ आज से पहले भी, जैसे अजीम साहब कह रहे हैं, और ये मुझे भी बहुत कोऑर्डिनेटेड। आप देखें जिस तरह इमीडिएटली इसराइल के झंडे उन्होंने साथ उठाए हुए हैं, इसराइल वालों से कि जी उनका प्लेन आ गया और फलाना हो गया, और फिर जिस तरह 14 साल बाद ताबोर जो है वो वहां से गए हैं और फिर इमीडिएटली ये बात शुरू हो रही है, तो इसमें सम फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेशन लगती है, जो हम हमेशा से कह रहे थे कि ये पाकिस्तान की ताकत शायद कुछ लोगों को, आई एम नॉट श्योर
शायद, क्योंकि आपको पता ही है कि पाकिस्तान पे पाबंदी भी लगी है, पाकिस्तान पे पाबंदी भी लगी है कि हमारे वो जो शाहीन मिसाइल और उरले परले मिसाइल है पाकिस्तान पे, और किसी जगह लगे ना लगे पाकिस्तान पे सैंक्शंस आई जरूर हैं कि चाइना के साथ मिलके ये कर रहा है। मियां साहब कुछ कहना चाहते हैं? पर मुझे लगता है कि जैसे प्रॉक्सी वॉर्स में पाकिस्तान ने तो बहुत कीमत चुकाई है, मगर अफसोस अमेरिका वहां जू नहीं रेंग रही, और इनके प्रेसिडेंट कहते हैं चाहे कश्मीर और इंडिया के और पाकिस्तान के दरमियान ये 1000 साल पुरानी जंग चल रही है।
देखिए आप ये जो अभी करके इन्होंने आशिफ साहब ने भी जिक्र जिस चीज का किया है, मेरा ख्याल है कि मैं अपनी हम्बल रिपोर्टिंग में बहुत पहले से, बल्कि मुशर्रफ साहब के जमाने में मैंने इस बात का अर्ज किया, क्योंकि मुशर्रफ साहब जो है ये इसराइली स्टेट को सबसे पहले उन्होंने मुझसे कहा था कि जी आप हमारी इसमें करें कि हम वी वांट टू रिकॉग्नाइज
इसराइल, मान लो।
लेकिन बात यह है वो ठीक है वो अपनी जगह, लेकिन बात यह है कि ये जो है अपना इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है, इसमें फॉरेन नेशनल्स की मूवमेंट आज से नहीं हो रही है, ये फॉरेन नेशनल्स की मूवमेंट कम अज कम 5-7 साल से हो रही है।
83,000 फॉरेनर्स हैं जिनको कश्मीर में, अगर मैं कहती हूं कि बलूचिस्तान में बलूची जो ट्राइब्स हैं वो उनकी अपनी एक रिवायत है, तो इसी तरह कश्मीर की भी अपनी रिवायत है, 83,000 से 87,000 लोग हैं जो जिनके पास डोमिसाइल नहीं थे, जिनको डोमिसाइल प्रोवाइड किए गए हैं, एंड ऑफ कोर्स जो कश्मीरी यंग हैं पूरी दुनिया की बदलती दुनिया के साथ वो लोग भी चेंज हैं, दैट्स व्हाट इट इज। मियां अशी साहब आप क्या फरमाएंगे इसके बारे में?
जी बिल्कुल, सो मेरा ये ख्याल है कि जो पाकिस्तान ने बात की और वो सबसे संजीदा
सेंसिबल,
हाँ जी सबसे सेंसिबल बात यह है कि जी ऐसे करते हैं कि एक इंटरनेशनल, आप यूएन के पास चले जाएं, कोई भी इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल आप हमारी नहीं मानते, हमने तो आपको बता दिया कि जनाब हमारी इससे कोई लेनी देनी नहीं है, हम आपसे ज्यादा सफर कर रहे हैं इस प्रॉब्लम में, आइए मिल बैठ के ये मसला हल करते हैं, लेकिन अगर चले आप इतने वो सीधे हुए में हैं तो आपको जो पसंद है एक इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट अदारे से आप इंक्वायरी करवा लें। अगर आपकी बात सच है तो आपको तो सबसे पहले इस बात को अग्री करना चाहिए कि जी हाँ यूएन के पास चलते हैं, कोई भी, लेट्स अग्री टू समबडी एन इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड पुट योर एविडेंस बिफोर देम, राइट, एंड देन लेट्स सी व्हाट दे डिसाइड। लेकिन चूंकि आपके दिल में शायद कुछ हो रहा है, आप जहर हमें नहीं पता कि क्यों आप ये हरकत कर रहे हैं, तो आपको तो अग्री करना चाहिए था। सो इससे ज्यादा मुनासिब और क्या बात हो सकती है कि जी हमने तो आपको बता दिया।
बहुत शुक्रिया आशर अजीम साहब से हमारी बात हो रही है। आशर अजीम साहब आइए अब जरा कनाडा की तरफ मुड़ाते हैं, आज इलेक्शन डे है और मुझे बड़ी हैरत होती है कि तीसरी दुनिया के ममालिक के लिए हम बड़ा हंस के कह देते हैं कि डेमोक्रेसी नहीं है, हालांकि डेमोक्रेसी किसी मुल्क में भी नहीं है। आई लिव इन कनाडा, आप मत समझिएगा कि यहां पर डेमोक्रेसी है, यहां पर भी जिससे अगर आपने सवाल करना है ना, पहले आपका सवाल वेरीफाई होता है, इज इट आंसरेबल और नॉट आंसरेबल। अगर आप इंडिया को डेमोक्रेसी कहते हैं, डेमोक्रेसी इंडिया में भी नहीं है, डोंट थिंक। अगर आप डेमोक्रेसी अमेरिका में कहते हैं तो अमेरिका में भी डेमोक्रेसी नहीं है। किस लिए? आज डोनाल्ड ट्रंप का जो फर्स्ट पीरियड आया था, उस फर्स्ट पीरियड में फैक्ट चेक भी लगाए गए थे फेसबुक की जानिब से, हर अखबार ने लिखा भी था, एबीसी को लाखों डॉलर का फाइन हुआ था। आज अगर डोनाल्ड ट्रंप जब आए हैं तो वॉशिंगटन पोस्ट ने भी अपना तमाम की तमाम चीजों को चेंज कर लिया। अगर आप देखते हैं एबीसी न्यूज को, उनको इतना फाइन हुआ, उन्होंने अपने आप को चेंज कर लिया। द ओनली पेपर एट द मोमेंट जो स्टैंड किया हुआ दैट इज द गार्डियन या सीएनएन, मगर सीएनएन को भी, एसोसिएटेड प्रेस को उन्होंने व्हाइट हाउस से निकाल ही दिया। ठीक है, तो किस डेमोक्रेसी की आप बात करते हैं? आज आप डोनाल्ड ट्रंप की आज की स्टेटमेंट निकाल के देखें, ये कोलंबिया डे एक सेलिब्रेट किया जाता है जिसमें लास्ट ईयर जो बाइडेन ने इंडिजिनियस डे भी, ये अमेरिका ये कनाडा इंडिजिनियस लोगों का है, उसने बाइडेन ने इंडिजिनियस लोगों को शामिल किया था, आज उसने कहा है कि नो कोलंबस डे मनाया जाएगा इंडिजिनियस, यानी जिस कोलंबस ने दरियाफ्त किया था ना अमेरिका, तो उन्होंने कहा कि हम इंडिजिनियस डे को इम्पोर्टेंस नहीं देते। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि हमें बड़ी गलतफहमी है कि डेमोक्रेसी इन मुल्कों में बड़ी डेमोक्रेसी है, देर इज नो डेमोक्रेसी इफ यू लुक एट अमेरिका, एंड अमेरिका इज द रोल मॉडल एट द मोमेंट।
And yes, you're very true. और आपने अभी सिर्फ पार्टली बात की, आपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, टू द एक्सटेंट ऑफ न्यूज पेपर्स एंड मीडिया बात की, जिसपे हर किस्म की पाबंदी और उनका गला घोंटने का सिलसिला जारी है एग्जीक्यूटिव की तरफ से, व्हाइट हाउस की तरफ से, प्रेसिडेंट की तरफ से, कि वो बात करो जो हम सुनना चाहते हैं। ठीक है जी, इसी तरह एक्स जो उनका सबसे लाडला है इस वक्त, तो वो भी मीडिया की हैसियत रख रहा है, तो वो उनके इलॉन मस्क के पास है, लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो इससे बहुत आगे है ना। आप ये देखें वो तमाम स्टूडेंट्स जो उनकी अमेरिका की फर्स्ट अमेंडमेंट, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन की फर्स्ट अमेंडमेंट, राइट टू फ्री स्पीच, अब वो तो सिर्फ प्रेस पे खत्म नहीं होता ना, आपने हर स्टूडेंट तो हर यूनिवर्सिटी को आपने जो है कह रहे हैं कि जी आप हमारी मर्जी से आगे चलेंगे, आप उनकी ग्रांट्स रोक रहे हैं। हर स्टूडेंट जिसने किसी ने पैलेस्टाइन की बात की या जो भी बात की, इट इज इन मटीरियल के जी आप किस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। राइट टू फ्री स्पीच मीन्स, देखिए मैं एक बड़ा टेक्सस वर्सेज जॉनसन, मेरा एक बड़ा मशहूर अमेरिकन हिस्ट्री हम पढ़ते थे, तो उसमें उसकी लेजिस्लेशन में मुझे वो सबसे पसंद डिसीशन है, वो एक साहब थे जॉनसन साहब, उन्होंने अमेरिकन फ्लैग को आग लगाई थी और वो मामला चलते चलते सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जी फ्लैग जो होता है ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का इशू है, फ्लैग को आग लगाना, क्योंकि फ्लैग तो एक कपड़ा है और उसकी एक नोशनल वैल्यू है और उसकी वैल्यू आपके दिल में होती है, और ये साहब भी उतने ही अमरीकी हैं, अगर उनकी नजर में इसकी ये वैल्यू है इस रंग के कपड़े की कि मैं इसे आग लगा दूं, तो वो उसका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और उन्होंने उसको छोड़ दिया। सो अमरीका एक जगह से चला था, इसकी सर्टन वैल्यूज थी, इसकी सर्टन डेमोक्रेसीज थी। अब तो अमेरिका में ये हालत है कि आप जजेस को अरेस्ट कर रहे हैं, जजेस आपको कह रहे हैं कि भाई आप किस तरफ चल रहे हो, तो आपने मतलब सुप्रीम कोर्ट ने रात के 1 बजे अमेरिका में फैसला किया।
पाकिस्तान बन गया
जी हर तरफ से। अच्छा मेरी नाचीज राय तो आ रहा है जो कि जाहिर है बहुत से लोगों को बहुत बुरी लगती है, मैं ये कहता हूं कि जो डेमोक्रेसी, हम डेमोक्रेसी तो कहते हैं कि तो डेमोक्रेसी को कहीं डिफाइन कर लेते हैं ना पहले कि डेमोक्रेसी से क्या मतलब लिया जाएगा। मेरी नाचीज राय तो हमेशा से ये रही है जी कि डेमोक्रेसी का मतलब ये है एक ऐसा निजाम जिसमें मेजॉरिटी अवाम का फायदा, और मुझे मेजॉरिटी अवाम का फायदा दुनिया में पिछले 50 सालों में जिन दो ममालिक में नजर आया है, एक तो चीन है। आप देखें मेजॉरिटी पॉपुलेशन को उन्होंने उठा के पॉवर्टी से उनके स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ कहां रेज किए हैं,
ड्रग्स में से निकाल के कहां खड़ा,
मेडिकल, हां जी ड्रग्स से निकाल के हमको फ्री हेल्थ, अकोमोडेशन, घर, उनके लाइफस्टाइल्स बढ़ाए, मेजॉरिटी पॉपुलेशन को उठाया। अमरीका में मेजॉरिटी बिचारी तबाह हो गई है और बिलियनर्स की हुकूमत है, और अब भी जो आप कर रहे हैं, जो आप टैरिफ लगा रहे हैं कि हर चीज पे आप टैक्सेस लगा रहे हैं, क्यों, ताकि उस रेवेन्यू को आप अमीरों के बिलियनर्स के टैक्सेस में रिलीफ देंगे कॉरपोरेशंस को। सो ये मेजॉरिटी, देखें कैपिटलिज्म मेरा हमेशा से मानना है, और फिर भी मैंने कहा कि लोग शायद मेरी बात इतनी पैलेटेबल नहीं होती, कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी बाय नेचर एक दूसरे की जिद है। कैपिटलिज्म में फायदा चंद लोगों का होता है और जमहूर में फायदा मेजॉरिटी का होता है। क्या हम डेमोक्रेसी को यह नाम देंगे कि हर साल, हर 4 साल बाद जाके कहीं वोट फेंक आना जमहूरियत है? अगर उससे मेजॉरिटी को फायदा नहीं उस निजाम से तो वो जमहूरियत नहीं है। दूसरा मुल्क आप यूएई ले लें, यूएई में आप इमराती की जिंदगी देखें, उसकी गवर्नमेंट इमराती की जिंदगी को उसने बहुत बेहतर किया, तो जमहूर तो फिर वो हुआ ना जी। तो
बहुत शुक्रिया अजीम भाई भी यहां पे हैं और जनाब आशर अजीम साहब आपको बहुत शुक्रिया, मगर मैं आपको एक सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि जो ममालिक डेमोक्रेसी का, ह्यूमन राइट्स का राग लापते हैं एब्सोल्यूटली रॉन्ग। कल मैं ब्रिटिश पार्लियामेंट की एक डिबेट भी देख रही थी एंड आई फेल्ट सॉरी कि ओप्रेस्ड को ओप्रेस्ड कहने के ऊपर भी आपको रोका जाता है। मैं जनाब नेहरू साहब का एक बयान सुन रही थी जिसमें जनाब नेहरू साहब ने ये कहा था कि उस जमाने में ब्रिटिशर्स ने मुस्लिम लीग को बना दिया था। अब आपको, कई लोगों को ये बात मेरी बुरी लगेगी, मगर हमेशा दो पार्टियों में से एक को कमजोर करने के लिए एक तीसरी पार्टी को खड़ा कर दिया जाता है, और ये मेरे साथ इंडिया के जस्टिस मार्कंडे आए तो उन्होंने भी यही कहा कि ये कभी नाम लगा दो इंडिया का, कभी नाम लगा दो पाकिस्तान का, मगर जो पहलगाम का वाकया हुआ ये किसी तीसरी ताकत ने किया है, दिस इज नॉट पाकिस्तान, जस्ट टू टेक एन एडवांटेज एंड टेक द आई आउट फ्रॉम व्हाट दे आर डूइंग इन बलूचिस्तान एंड दिस इज अ थर्ड वर्ल्ड जिसने, जो कि इस खित्ते को मजबूत होता देखना नहीं चाहती। आप कंक्लूड कर दीजिएगा आशिर साहब।
نہیں جی بس میں تو بلکہ میرے تو یہ خیال ہے کہ عظیم بھائی سے ہم تھوڑا سا اس پہ کیونکہ وہ یو ایس کو یہاں ریپرزینٹ کر رہے ہیں جو ہم نے باتیں کی.
میاں صاحب آپ کچھ فرمائیں, آپ کے لیے آیا پیغام.
آشیش صاحب کمنگ فرام یو اٹس این آنر اینڈ اے پلیجر, لیکن ہر چیز میں یو ایس ریپرزینٹ نہیں کرتا, میں اخبار غریب اخبار نویس ہوں, تو اخبار نویس کے طور سے جہاں مجھے جو کلر ان کو
ریپرزینٹ, تو آپ ریپرزینٹ تو جیو کو کر, آج بھی آپ جیو کے لیے ٹریول کر کے یہاں آئے.
میں اس کی وجہ ہے کہ بائی ورچو آف ون تھنگ کہ میں مجھے جو ہے یہ ذمہ داری ہے کہ میں ہوں یو ایس اینڈ کینیڈا, یہ دونوں میری ٹیریٹری ہیں, میری ڈومین ہے, بیورو چیف ہوں, ساری عمر جنگ کے ساتھ گزری ہے, اور پھر یہ کہ یونائیٹڈ نیشن, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ, پینٹاگون وغیرہ سے جو ہے وہ مطلب کہ مجھے احتساب فیض کرنے کا حاصل ہوا ہے کہ بھئی ان سے بات کرنا.
آپ کیا فرمائیں گے جی, ہیونگ سو مچ ایکسپیرینس,
کیا چیز کس سلسلے میں آپ
اباؤٹ دی کنکلوڈ کریں,
کنکلوڈ
ہم جو ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں, فریڈم آف اسپیچ کی بات کرتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں تیسری دنیا میں فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے, اور تیسری دنیا کے لوگ کہتے ہیں جی ممبر پارلیمنٹ چن تو پہلے انہوں نے پوچھا جی پاکستان نو کی ریسیو کرنا, ہاؤ ڈیئر آئی لیو ہیئر, یہاں کے پرابلمس کو میں ریزالو کروں کہ نہ میں تین میں رہوں گی نہ میں تیرہ میں رہوں گی.
لیکن دیکھیں اس میں ایک چیز سے آپ سے میں تھوڑا سا ڈس ایگری یہ کروں گا کہ رومن ہسٹری سے آج تک آپ دیکھ لیں تو اس میں یہ ہے کہ مائٹ از رائٹ ہیز بین رائٹ, رومنز بھی یہ کرتے تھے ٹھیک ہے نا آج تک. لیکن یہ کہ جو تیسری دنیا کے لوگ ہیں, ایک زمانہ وہ تھا جب گروپ 77 جو ہے پورے یونائیٹڈ نیشن میں ڈومینیٹ کرتا تھا, اور اس کو 5 P's جو ہیں آپ کے امریکہ, چائنا, یہ سر چائنا تو اس وقت نہیں تھا, تائیوان تھا, یہ سب اس سے ڈرتے تھے اور ان کے فیصلوں کو مانتے تھے, پھر ان کو توڑا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تھرڈ ورلڈ کی لیڈرشپ اتنی بری نہیں ہے, کہیں نہ کہیں تو ہونا, انہوں نے اتنا موقع کیوں دیا کہ بھئی امریکہ ہی جو ہے وہ ایز اے گلوبل پاور ڈیفینیشن دے ہیومن رائٹس کی آپ کو, تو آپ اسے مان لیں ٹھیک ہے, آپ کے معاملات میں انٹروژن کرے اور کہہ دے جی آپ جو ہے وہ فلانی میوٹی
کو نہیں ہے تو مان لو
میوٹیلیشن کا جینڈر, جو ایشوز آپ کے کلچرل ایشوز ہیں تھرڈ ورلڈ کے, ان کو جو ہے وہ ہیومن رائٹس کی کلر دے کر یا اس کو جو ہے وہ ان ہیومن ایکٹ قرار دے کر اور وہ اس کو جنابی ڈیفینیشن دے دیں, تو ہمارے جو تھرڈ ورلڈ کے حکمران ہیں اس کو ماننا شروع کر دیتے ہیں. تو بات تو یہ ہے کہ ہماری اپنی بھی جو لیڈرشپ ہے نا, اس کی کیپیبلٹی جو ہے, اس کی ویژن دیکھیے, اب اس وقت مارک کرنی ہے ٹھیک ہے, امریکہ اور کینیڈا کا جو ہے پاپولیشن سے لے کے باقی کئی چیزوں میں کوئی میچ نہیں ہے ٹھیک ہے, اور وہ کئی دفعہ کہہ چکے ہیں ہمارا یہ بیک یارڈ ہے, اب وہ کہہ رہے ہیں 51st اسٹیٹ ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کینیڈا کی چھوٹی سی 40 million کی جو مطلب کہ نیشن ہے وہ کھڑی ہو گئی ہے, اس نے کہا نہیں جی, اور یہ نہیں ہے کوئی فائٹ نہیں.
آپ کے پوری کی پوری جو یہ جو سیاحت کی انڈسٹری ہے ڈبی پڑی ہے اس وقت, آپ کی ایئر لائنز ڈبی پڑی ہیں
جی بالکل,
آپ کی آج پیس برج کی جو ڈیوٹی فری شاپ ہے وہ کلیکشن میں چلی
گئی. وہ تو نہیں ہے, آپ دیکھیں آپ نے جنگ کرنے کے بجائے آپ نے الاسکا پر ٹول لگایا, آپ یہ دیکھیے کہ آخر تھرڈ ورلڈ کے لوگوں نے جو لیڈرشپ ہے وہ اس قسم کے ڈیسیجن کیوں نہیں لیتے کہ جینیس ڈیسیجن لے کر اپنے قوم کو.
بہت شکریہ, میں یہی آپ سے آشر عظیم صاحب, آپ لیڈرشپ کے ساتھ رہے ہوئے ہیں, آشر عظیم میاں صاحب تو لکھتے ہیں نا, یہ اور طرح سے ساتھ رہے ہیں, یو نو ان سائڈ آؤٹ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی لیڈرشپ جو ہے دے آر سیلفش دیئر فار دیئر پرسنل بینیفٹ ایٹ اینی پلیس اینڈ اینی پارٹی اینی پارٹی, وائی دے ڈو ناٹ ٹیک اے اسٹینڈ فار دا کنٹری.
دیکھیں اب تو جب سے مجھے یاد ہے یا ہم نے ہوش سنبھالا ہے تو پاکستان اس قابل ہی نہیں تھا, ہم جو ڈیٹ کی جس زنجیر میں پھنسے ہیں نا جی, جیسے میں اکثر مثال دیتا ہوں, جب میں سول سروسز کا ایگزام دے رہا تھا ابھی, لائک دس واز جنرل ضیاء صاحب, وین جنرل ضیاء ڈائیڈ تو ظاہر ہے ہم لوگ اس وقت ابھی بڑے ہوئے تھے, مطلب جوانی میں آ چکے ہوئے تھے, اور جب ان کا دور آیا تو ہم اس وقت ٹین ایجرز میں, تو جب جنرل صاحب گئے ہیں, جنرل ضیاء صاحب گئے ہیں, تو میں نے آپ کئی دفعہ کہا ہے کہ جسے وہ سروسز اکیڈمی میں بیٹھے ہوئے امیڈیٹلی کافر بینظیر بھٹو صاحبہ کا ان کا الیکشن تب ہوا, حکومت تب آئی جب وی ور آلریڈی ان سروسز اکیڈمی, وی ور دیئر, तो मैंने कहा कि जी उस वक्त हमने मैंने एक सवाल पूछा था अपने इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर से कि जी बेनजीर साहब के पास इकोनॉमिक मिनिस्टर क्यों नहीं है, तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि जी पाकिस्तान को 17 रुपए के लिए इकोनॉमिक मिनिस्टर की जरूरत नहीं है। मुझे बात समझ में नहीं आई, मैंने कहा जी क्या मतलब, तो उन्होंने मुझे याद है कि एक स्लाइड फेंकी थी स्क्रीन पे जिसमें 35-36% हमारी डिफेंस स्पेंडिंग थी, इतनी ही कोई 36-37% हमारी डेट फाइनेंसिंग थी, क्या जो लोन्स पाकिस्तान ने लिए हुए थे वो हम वापस करते थे, 9% कंट्री का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस था। तो ये तीन एलिमेंट्स मिला के हम 83% ऑफ द जो हमारा बजट होता था उस पे हम पहुंच जाते थे। तो 17 रुपए उन्होंने कहा जी पीछे बचते हैं जिसमें आपने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। तो मैं उसके बाद उठ के लाइब्रेरी गया और मैंने जो पिछले सालों के बजट देखे तो वो लाइन यूं जा रहे थे, तो जब आप उसको इंटरपोलेट करते हैं तो मुझे एब्सोल्युटली क्लियर था कि अगले 3-4 साल में हम लोगों की तनख्वाहें देने के लिए भी उधार ले रहे हैं। उधार जो है ना जी आज की दुनिया में ये कंट्रीज को इंडेट करना और उनको इस किस्म के लोन्स देना जो कि नॉन प्रोडक्टिव हो एंड देन मेक श्योर के जी दे कैंट गेट अवे कैंट गेन फ्रॉम इट, ये सबसे बड़ी गुलामी की जंजीर है। अब इस वक्त तो हमारी सूरत हाल ये है ना जी, ना हम फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसे खर्च कर सकते हैं, ना अपने लोगों की एजुकेशन पे पैसे खर्च कर सकते हैं, ना हेल्थ पे कर सकते हैं। सो हमने तो जब से बड़े हुए हैं हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान इकोनॉमिक गुलामी में। अच्छा, उसमें यकीनन हमारी अपनी भी फॉल्ट है, हमारी लीडरशिप इस काबिल नहीं है कि जी वो अपने लिए एक पाथ चार्ट आउट कर सके। लेकिन पता है मसला क्या है, आप ये देखिए कि जहां भी लीडरशिप सिंसियर थी लोगों के साथ तो वो अपने वो कहते हैं ना वो एक किताब है कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन की, और फिर अगर आप अमरीकी पॉलिसी को या इनकी पॉलिसी को पढ़ें जो एक वेस्ट की पॉलिसी रही है, तो जहां भी कोई ऐसा लीडर है जो कि आपसे डेट नहीं लेता और आपकी
बात को वैसे ही अबॉलिश कर दिया जाता है,
तो उसको वैसे ही मार दिया जाता है। देखें आपके सऊदी अरेबिया में शाह फैसल, इजिप्ट में अनवर सादात, लीबिया में मोहम्मद कदाफी, पाकिस्तान में भुट्टो, आपके जितने वो लीडर्स थे जो कि इस्लामिक समिट के लीडर्स थे उन सब के साथ क्या हुआ। तो मसला यह है कि आपकी ऐसी हुकूमतों और लीडरशिप को फिर आगे दिल नहीं दिया जाता।
बहुत शुक्रिया जनाब अशर अजीम साहब मेरे साथ, और मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ आप कुछ
बिल्कुल ये आशर साहब ने जो कुछ फरमाया है बिल्कुल ये दुरुस्त है, और आपकी बात भी ये कि जो कुछ इस किस्म का सर उठाने वाला होता है वो है। एक दफा मेरा एनकाउंटर हुआ हेनरी किसिंजर के साथ, वो वाज अ ब्रेन ऑफ द अमेरिकन पॉलिसी, उनसे मैंने इटालियन रिसेप्शन था तो उसमें मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि मिस्टर किसिंजर देयर इज एन मतलब कि अपना वो है ह्यूमर है और ये आमतौर से कहा जाता है कि यू थ्रेटन भुट्टो फॉर ए हॉरिबल एग्जाम्पल, तो वो एक मिनट के लिए रुके और उसके बाद उन्होंने कहा कि आई विल नॉट डिग्निफाई योर कमेंट विद एन आंसर। आई सेड आई वांट टू नो एन आंसर बिकॉज आई एम ए जर्नलिस्ट, तो ये यूनाइटेड नेशन में था, तो उन्होंने कहा कि मैं इसको डिग्निफाई भी नहीं करूंगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं किताबों में मैंने उन्हें बताया कि इवन अमेरिकन बुक्स में भी कई एक लोगों ने इसको रेफर किया है, तो आप क्यों नहीं अपनी सफाई देते। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं सफाई देने को तैयार हूं या उनका अपना मौकफ देने के बजाय उन्होंने एक ही बात कही, आई विल नॉट डिग्निफाई यू नो योर कमेंट।
मैंने तो भी पहलगाम का भी जब वाकया हुआ है तो बहुत सारे फैक्ट्स को हम फेस करना नहीं चाहते। अशर अजीम साहब सर आपका बहुत शुक्रिया। कनाडा के इलेक्शन के बारे में क्विक नोट आपका चाहिए, व्हाट डू यू थिंक, आई थिंक एनी व्हाट नंबर्स डू यू एक्सपेक्ट एट द मोमेंट, एंड आई विश मेरी विदाउट एनी पार्टी, दो बड़ी पार्टियां हैं जिसमें कंजर्वेटिव एंड लिबरल हैं, आई विश जो भी पार्टी आए टू फाइट अगेंस्ट व्हाट इज हैपनिंग बिटवीन अमेरिका एंड कनाडा मेजॉरिटी में विन होना चाहिए ताकि कहीं कोई वीक पॉइंट ना रहे। बट अनफॉर्चुनेटली अगर अगेन मैं इसको आई माइट बी रॉन्ग डोंट टेक मी नेगेटिव, अगर लिबरल्स आते हैं तो अल्बर्टा विल बी वेरी ऑफेंडेड एंड ऑफ कोर्स द सेम इज, हालांकि क्यूबेक में लिबरल्स लीड कर रहे हैं, तो क्या कहते हैं आप इसके बारे में?
دیکھیں میں تو جی سیدھا کیونکہ ظاہر میں بول بھی رہا ہوں ایک میڈیا پہ, لیکن ظاہر میرا ایک رائٹ ہے, میں ایز اے ووٹر بھی ہوں, تو میں تو سیدھا لبرل ہوں اور میں نے لبرل کو ووٹ بھی دیا کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حالات میں جو لیڈر ہے لبرلز کا وہ سب سے بہتر ہے. اور یقینا بٹ آئی شیئر یور ویو کہ جی ظاہر صرف میرے مرضی سے تو ملک نہیں چلنا, سو کینیڈا میں میجورٹی نے جو فیصلہ کیا ہے میری دعا ہے کہ وہ ٹھیک فیصلہ ہو اور ہم ایک ٹھیک لیڈرشپ چوز کر سکیں اور اس کے پاس پھر اتنی اسٹرینتھ ہو کہ وہ ہنگ پارلیمنٹ نہ ہو, وہ اپنی مرضی سے لے کے آگے چلائے. اب اگر ایک اسٹیٹ کو نہیں پسند تو بھائی جمہور تو اگر ووٹ ڈالنے کی بات ہے اور میجورٹی نے
کیوبیک بھی اب دیکھیے بڑے عرصے کے بعد وہ بھی تھوڑی سر اٹھا رہا ہے, جیسے کہ امریکہ پروٹیکٹس اس مور اور البرٹا تو آپ کو پتا ہی ہے ڈینیل سمتھ,
تو دیکھیں نا کہ ووٹ پڑا پھر جو ہوگا وہ دیکھی جائے گی, اس طرح گھبرا تو نہیں سکتے.
دس از اے گریٹ کنٹری, ڈیموکریٹک کنٹری,
اگر البرٹا کو پسند ہے تو ٹھیک ہے, نہیں پسند تو نہ
پھر. بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ اشر عظیم صاحب, آپ کا بہت شکریہ سر فار بینگ ود اس. وی مائٹ کال یو بیک اگین ایٹ دا ٹائم لٹل آفٹر تاکہ ہم الیکشن کے بارے میں تھوڑی سی آپ کی بات چیت, جب پولز آنا شروع ہو جائیں گے 7:30 کے بعد ہمیں پتہ لگنا شروع کر دے گا, کیونکہ وہ نیو فاؤنڈ لینڈ اور آلویز لیبراڈور میں ہمیشہ پروناؤنس کرنے میں پرابلم کرتی ہوں, تو پھر ہم کوشش کریں گے کہ آپ سے رابطہ کریں. پلیز اسٹے کنیکٹڈ.
تھینک یو, تھینک یو
عظیم بھائی.
مائی پلیجر سر, یہ تو بڑا مطلب بونس مجھے انہوں نے عارفہ نے دیا ہے کہ آپ بھی لائن پر تھے تو آئی کوڈ بینیفٹ فرام یور ان پٹ, کیونکہ بڑا سوبر آپ کا ایک ان پٹ ہے, تو اٹ ہیز بین اے پلیجر. اور یہ نہیں ہے ہمارا, میرا خیال ہے کہ کنورجنس بھی ہے جو ہے پوائنٹ آف ویو کا کافی بالکل وہ صحیح ہے, کیونکہ ہم دونوں تھرڈ ورلڈ کنٹری سے آتے ہیں تو ہمارے پرسپشن وہاں کے جو ہیں وہ ایروگنٹ پرسپشنس نہیں ہیں, وہ ایک مطلب کہ ہیومن پرسپشنس ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ ہم مطلب کہ کمپرومائز کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن پاکستانی لیڈرشپ جو ہے اس سے میں بہت زیادہ غیر مطمئن اس لیے نہیں ہوں کہ میں ان سے دور ہوں, ان کے ساتھ انٹریکٹ کر کے بھی جب ان کی توجہ جو ہے جن معاملات کی طرف دلوائی جاتی ہے, چاہے وہ مشرف صاحب ہوں, چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں, چاہے وہ جناب علی بے نظیر ہوں, اور جن جن سے مجھے واسطہ پڑا ہے, یقین جانے کہ وہ ایک اپنی ایک اس ایروگنس میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ سمجھتے ہیں جس کرسی پر وہ بیٹھے ہیں نعوذ باللہ وہ مطلب ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کے بعد کی کرسی ہے, اور ان کی ویژن اور وہ اپنے آپ کو پاکستان قرار دیتے ہیں, اپنی ذات کو جو ہے وہ پاکستان کا مرکز اور پاکستان قرار دے دیتے ہیں, پاکستان کی مٹی جو ہے اس کے بارے میں ان کی توجہ نہیں ہوتی.
بہت شکریہ. ڈو یو تھنک کہ جنرل آصف منیر صاحب از اندر ضیاء الحق؟
ان سرٹن تھنگس یس, آئی فیل دیٹ وے.
یو تھنک ہی ول گو فار 10 ایئرس؟
ہاں لیکن ہاں وہ تو جی 2030 کی ایک دفعہ یہ نیو یارک میں آئے تھے تو 2030 تک کی تو بات کر کے گئے تھے کہ جی آئی وانٹ ٹو پٹ پاکستان آن اے میپ ایز اے ڈیولپڈ کنٹری بائی 2030, تو میں نے کسی کے ذریعے پوچھوایا کہ جناب ان کی اپنی ٹرم تو 5 سال ہے لیکن یہ 2030 تک کی ویژن جو ہے ہمیں یہ دے رہے ہیں تو کیوں دے رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ آئی تھنک کہ اگر وہ پاکستان کی ترقی چاہتے ہیں تو اٹس فائن.
اچھا صاحب آپ کے لیے بھی نیوز ہے یہ؟
دیکھیں میرا تو میں نے تو جس شخص کا یہ خیال ہو کہ جی چائنا سب سے بڑی جمہوریت ہے کیونکہ میجورٹی کا فائدہ ہے, تو میں تو ووٹ ڈالنے کو جمہوریت نہیں سمجھتا. اگر آپ کا ملک ڈیولپ ہو سکتا ہے, میجورٹی عوام کو فائدہ ہوگا, تو میری طرف سے
اصل منیر بنے یا جو بنے ہو کیئر.
جی ویری رائٹ,
تھینک یو ویری مچ سر, تھینک یو ویری
بینیفٹ آئی ڈونٹ کیئر,
تھینک یو ویری مچ,
ویری کائنڈ سر, تھینک یو ویری مچ. آصف صاحب
فائدہ, تو گیٹ ریڈی آصف منیر صاحب, اف یو کین چینج دا فیٹ آف کنٹری, لیٹس سی. اسٹے ٹیونڈ, ویلکم بیک.
ڈاؤن ٹورانٹو
ٹرکنگ والے ویرو دھیان نال سنو, ٹرک جدہ دا بھی چلاونے ہو مینوئل جا آٹومیٹک, کوئک ٹرک لیوب چیتے آہی نہ رکھیو, ٹرک دی بڑیا سروس لئی کوئک ٹرک لیوب. لو جی تیجی لوکیشن بھی کھول دیا, ایگزٹ 579 فرام ہائی وے 401 ان ناپنی. آہو جی کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں, ڈرائیو تھرو فیسلٹی, ایگزٹ 579 فرام ہائی وے 401 ان ناپنی. کوئک ٹرک لیوب دا ون اسٹاپ شاپ, 519-622-0660 یا کوئک ٹرک لیوب .com. QTL, because we care.
Quick truck you!
Bye.
अपनी कम्युनिटी का सब तो वड्डा वधिया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर दी पहचान बन चुकी है।
ओ फिर बने भी क्यों ना, क्योंकि बेडरूम सेट, सोफा सेट, मैट्रेसेस, डाइनिंग टेबल, डेकोरेटिव आइटम्स, गल कीजिए सारे घर दा फर्नीचर वधिया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जांदा। सोडी फर्नीचर तो 3 साल लई नो ब्याज।
142 कैनेडी रोड, ब्रैम्पटन, 9058747171।
शॉपर खुद जाइए तैयार। लीसा कॉस्मेटिक्स फिर से लाए हैं बड़े ब्रांड्स की बड़ी सेविंग्स वाली बड़ी सेल।
जी हाँ, वर्ल्ड फेमस ब्रांड्स के परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स एंड स्किन केयर, हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स और भी बहुत कुछ।
80% तक की सेविंग ऑन योर फेवरेट प्रीमियम ब्रांड्स।
बस आपको आना है लीसा कॉस्मेटिक्स, 135 कॉमर्स वैली ड्राइव, ईस्ट मार्कम, जस्ट ऑफ हाईवे 404 एंड 407 एंड क्लोज टू 401।
सेल इज फ्रॉम April 26 टू May 18, फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे। मदर्स डे गिफ्टिंग का भी एक्सीलेंट मौका।
एना सोना कर लिया, हुन अपलायंसेस भी स्टेनलेस स्टील दे ही चाहिए।
हाँ जी, स्टेनलेस स्टील दे अपलायंसेस मिलेंगे तानू ब्रैम्पटन टीवी एंड अपलायंसेस दे, जिसे फ्रिज, स्टोव, डिशवॉशर, थ्री पीस किचन बंडल, इसके अलावा फ्रंट लोड वॉशर एंड ड्रायर, एनर्जी सेवर, एनर्जी स्टार, फिर टीवी सेक्शन एच सोनी, सैमसंग, पैनासोनिक, शार्प, हर साइज से हर ब्रांड का टीवी विद द लोएस्ट प्राइसेस इन द टाउन, सिर्फ ब्रैम्पटन टीवी एंड अपलायंसेस दे। ब्रैम्पटन टीवी एंड अपलायंसेस, 801 Bowie Drive West, Brampton, या कॉल करो 905-450-2828-905-450-2828।
मेरी पूरे साल की सेविंग $400 हुई है।
मेरी सेविंग $350।
मेरी सेविंग सिर्फ $100।
और मेरी सेविंग सबसे ज्यादा हुई है, मैंने सेव किए हैं $1,775।
क्या चमत्कार किया, मुझे भी गुर सिखाओ ना।
वही बात सादा सी है, हमारे पास 2 गाड़ियाँ और 1 घर है, और इन सब की इंश्योरेंस मिलाकर मैंने जबरदस्त सेविंग की है। और ये जादू किया है ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह ने। आप भी अपनी गाड़ी और घर के इंश्योरेंस में खूब सेविंग कर सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह, 6479037 6479037।
जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं, लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी, 6477-702-2023-647-702-V23 license number 10394।
खूबसूरत दांत, बाएतमाद मुस्कुराहट और बाएतमाद गुफ्तगू, आपकी और आपके खानदान की मुस्कुराहटों की जमीन। फिलिंग्स, क्राउन्स, ब्रिजेस, क्लीनिंग, एक्सेप्टिंग न्यू पेशेंट्स, फ्री कंसल्टेशन, दांतों की संभाल के लिए डॉक्टर पद्मजा, 310 शेपर्ड एवेन्यू ईस्ट, 299-7466।
अकाल ट्रक एंड लूम, ताड़े ट्रक बादशाह दी क्वालिटी सर्विस, रिपेयर, ऑयल चेंज, वॉश ते मेंटेनेंस। एक और खुशखबरी, नॉर्थ अमेरिकन, चाइनीज ते कोरियन नवे ते इस्तेमाल शुदा टायर्स विद फुल वारंटी।
अकाल ट्रक एंड लूम, 1776 मेयरसाइड ड्राइव, 905-565-1100
वालिया ट्रैफिक लीगल सर्विसेज से जनाब आरएस वालिया।
केयरलेस ड्राइविंग,
स्पीडिंग या फिर एक्सीडेंट,
फेल टू रिमेन स्टॉप एट द सीट,
रेड लाइट या फिर सीट बेल्ट,
परमिट ड्राइव विदाउट इंश्योरेंस,
रेसिंग, स्टूडेंट ड्राइविंग या फिर कॉट वाइल यूजिंग फोन,
स्पीडिंग,
आरएस वालिया आपके टिकट से निजात दिलवाएंगे और आपके पॉइंट्स भी सेव करेंगे। 9054542112 4542112।
जी सब सुन रहे हैं प्रोग्राम साजो आवाज में, आपके साथ आरिफ मुजफ्फर, प्रोग्राम में हमारे साथ रहिएगा। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हमारे साथ अभी थे राणा सिद्धू साहब, राणा सिद्धू साहब को हम लेंगे। गुरप्रीत पुरपा साहब के साथ दोबारा जाने की कोशिश करेंगे। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड हमारे साथ थोड़ी देर में शामिल हो सकते हैं जनाब नदीम साहब भी शामिल हो सकते हैं और उनसे भी बातचीत कराएंगे। आमिर मेरे साथ हैं, जनाब अजीमिया साहब मेरे साथ। अजीमिया साहब, आप मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के ऊपर गए तो क्या महसूस किया आपने?
मुझे इतफाक की बात यह एक तो यह है कि यहाँ के पोलिंग स्टेशन जो हैं उसके रूल्स बड़े टफ हैं।
मतलब आप अंदर कॉरिडोर में भी नहीं जाएंगे, आप प्रॉपर्टी से बाहर करेंगे। अब लोग गाड़ियों में आते हैं तो वो कहते हैं जी आप साइड वॉक पे वहां खड़े हों, तो आई एनकाउंटर्ड दैट काइंड ऑफ यू नो इश्यूज। लेकिन उसके बावजूद जिन लोगों से मैंने बात की है और फिर यानी कैनेडियन वोटर जो हैं वो बड़े प्राइवेसी कॉन्शियस मुझे नजर आए हैं, तो वो कहते हैं कि भाई इस पे नहीं, इलेक्शन पे बात ही नहीं होनी चाहिए। हालांकि इलेक्शन के जनरलिटीज पे बात करने के लिए भी जो है वो दिक्कत हुई है, लेकिन यह है कि
हम जो बैठे हुए हैं हर चीज के बारे में बिल्कुल अंदर की रिपोर्ट लेके आने के
जी जी
पाकिस्तान भी बैठे हुए।
मैं अंदर गया हूं, मैंने सुपरवाइजर से बात की है कि भाई मुझे अंदर मतलब है कि कुछ अपना वीडियो वगैरह बना लेने,
नॉट पॉसिबल
बाहर भी निकला हूं और कॉरिडोर में मैंने कहा कि मुझे करने दें, फिर कॉरिडोर के बाद खामोशी हुई, उसके बाद उन्होंने कहा कि आप वहां, तो फिर मैं दरवाजे से बाहर खड़ा रहा, फिर वहां भी उन्होंने सिक्योरिटी का बंदा भेज के, लेकिन यह कि मैंने आई वॉज सक्सेसफुल इन टॉकिंग टू सम ऑफ देम
आउटसाइड।
ठीक है,
पता हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमारी प्रॉब्लम कुछ और है पाकिस्तानियों की। आई एम सो सॉरी, दिस इज ऑल व्हाट वी आर।
जी 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 नहीं, लेकिन फिर भी मैं कामयाब हुआ है। कुछ बांग्लादेशी हैं, एक दो वाइट्स हैं लोग, उनसे जो है वाइट कैनेडियंस उनसे बात हुई है, पाकिस्तानी नौजवानों से जो बात हुई है यानी ऑन रिकॉर्ड उन्होंने विलिंगली, क्योंकि कंसेंट भी बड़ी जरूरी है ना, यहां तो ये भी है कि कंसेंट भी बड़ी जरूरी होती है वीडियो करने के लिए, तो वो सारी करके मैं आया हूं। तो उसमें मुझे ये अंदाजा हो रहा है कि एक तो लिबरल जो है उनका पल्ला भारी है, और मैं जिन राइडिंग्स में गया हूं वो है भी चूंकि माइनॉरिटीज वाली, तो वहां पर जो है क्लियर मतलब के नजर आ रहा है।
सही, उसमें ये कि हर इंसान मतलब खुदा के पास से होके आया, मैं आप हम सारे डायरेक्ट लमिया से हिंट लेके आए हैं, बट यस ऑफ कोर्स इस वक्त जो सबसे ज्यादा एक खौफ की फिजा है उसने हमें बहुत मुतासर किया।
जी बिल्कुल,
इट्स अ फैक्ट, एब्सोल्यूट फैक्ट।
ट्रंप टैरिफ और जो आपसे सुबह बात भी हो रही थी, ड्रग्स क्राइम, ये वो फैक्टर्स हैं कि जिसका जो है वो दबाव हर वोटर ने कनाडा में महसूस किया है और वो उसी के ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं।
मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि जी वो जी लिबरल आ गए तो पता नहीं मिडिल ईस्ट की सूरत हाल बदल जानी है, कि पिछले इतने अरसे से कल मैं एक रिपोर्ट सुन रही थी, मैंने प्रोग्राम में पहले भी जिक्र किया है इसका, ब्रिटिश जो काउंसिल में जब ये बात हुई, they did not let girl ask the question, ठीक है, because वो होगा जो बड़े चाहते हैं,
yes.
Nobody can do nothing,
ठीक,
मगर हम अपने दिल को तसलियों के लिए कहते हैं कि जी we can change the map। अच्छा सुन रहे हैं प्रोग्राम साजो आज, मैं आपके साथ आरिफ अहमद। प्रोग्राम में बहुत शुक्रिया उन तमाम हमारे स्पॉन्सर्स का जो इस काबिल करते हैं कि प्रोग्राम हम आपकी खिदमत में पेश कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया 4006, आपने मुझे मैसेज भी किया है और आपने, मैंने बिल्कुल अपनी टीम के लोगों को कहा है, दे आर लुकिंग आफ्टर, दैट इज बीन लुक्ड आफ्टर। थैंक यू वेरी मच, आपने जो मतलब जब टेक्निकल प्रॉब्लम हो तो यू प्लीज स्टे इन कॉन्टेक्ट, वी विल ट्राई टू रिजॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। अजीमिया साहब इस वक्त मौजूद हैं, आप मुख्तलिफ लीडर्स से भी मुलाकात, आपकी बेशुमार कैंडिडेट से मुलाकात हुई, इंडियन कैंडिडेट से भी मुलाकात हुई, बिकॉज इंडियन कम्युनिटी की तादाद बहुत ज्यादा है यहां पे और एक अरसे से रह रहे हैं। हमारे एक चीज आपने महसूस किया कि पाकिस्तानी ये समझते हैं अब मेरे घर दियां प्रॉब्लम, पाकिस्तानी दियां प्रॉब्लम रिजॉल्व कर रहा
हूं। जी जी,
वेयर एज आर नेक्स्ट जनरेशन हैज टू लिव हियर इन कैनेडा,
वेरी राइट।
सो रादर देन इन्वॉल्विंग आवर मेंबर पार्लियामेंट्स जो हमारी कम इल्मी बन जाती है कि भाई तुम अपने मुल्क की प्रॉब्लम्स को, डर्टी लॉन्ड्री को लेकर यहां क्यों आ गए, टॉक टू मी अबाउट द प्रॉब्लम्स हियर इन कैनेडा, क्या फरमाएंगे?
मैं आपको बताऊं, ये
ہمارے جو مطلب کہ وہ لوگ جو پارلیمنٹ میں اب تک بیٹھ سے چلے آئے ہیں ٹھیک ہے وداؤٹ نیمنگ دیم
جی
انہوں نے بات تو یہ کیا ڈلیور کیا کیا ہے ٹو دا کمیونٹی اچھا کمیونٹی کی ضرورت میں نے اس وقت سے جو سروے کیا کہ جی ویزا اور اسلام آباد میں دفتر کا قیام
بڑا ویلڈ
یہ بس اٹھایا ہوا ہے اس سے آگے کی کوئی بات نہیں کر رہا
یعنی ایک اور چیز بھی اٹھائی ہے کہ اگر آپ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ دیکھیں انڈیا سے زیادہ یا پاکستان سے یہ بہت بڑا کنسرن ہے بھی ویلڈ کنسرن ہے کہ پاکستان سے ویزا کے لحاظ سے جو کوشچن آنسر ہے دیٹ از تھرو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہمارے اتنے ممبر پارلیمنٹس ہیں ان میں سے کوئی آج تک ایک یہ نہ کر سکا کہ لائیو چیز ہمیں
اچھا وجہ پر میری سمجھ میں نہیں آتی پھر پارلیمنٹ میں جب اچھا یہ نہیں ہے میں نے کمیونٹی سے بھی انٹرویوز جو کیے ہیں ممبر سے جو ایکٹیو تھے مثلا ملٹن میں ڈبیٹ ہوئی ہے نا تو ملٹن میں جو ڈبیٹ کے بعد ڈبیٹ سننے آئے تھے اس کا مطلب پولیٹیکلی اویئر لوگ تھے ٹھیک ہے نا کیونکہ وہ باقاعدہ کام سارے چھوڑ کر وہ ڈبیٹ کو سننے آئے تھے اور میں نے بھی ڈبیٹ سنی ہے انہوں نے بھی دیکھی ہے ان کو ان کے پاس بھی جو ہے وہ میں نے یہی دیکھا ہے ان کی سب کی شکایت ایک ہی ہے کہ اب تک جو ہے یہ جب آتے ہیں ہمارے پاس اپنا ایم پیز تو کہتے ہیں جی ہم پاکستانی ایتھنیسٹی ہماری آپ کی ایک کامن ہے آپ ہمیں ووٹ دیں اور جس وقت وہ الیکٹ ہو جاتے تو کہتے ہیں جی ہم تو سارے کینیڈینز کے جو ہے نا ساری مائنورٹیز کے ہم نمائندے ہیں ٹھیک ہے فائن بالکل آپ ہیں لیکن پھر آپ یہ روپ چھوڑ دیں نا آپ پھر ساری مائنورٹیز کے ساتھ بات کریں اور کہیں ساری مائنورٹیز کو ایکول اپیل کریں اور پاکستانیوں کو یہ واضح کر دیں کہ بھئی ہم پاکستانی ضرور ہیں لیکن ہم پورے کینیڈا کے جو ہمارے ہلکے کے جتنے کینیڈینز ہیں ہم ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں آئی ول بائی دیٹ لیکن آپ کرتے یہ ہیں کہ یو گیو دم فالس ہوپ جب لیکن جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں جب آپ الیکٹ ہو جاتے ہیں تو یو ٹرن یور بیک ہوں ناٹ فیئر نمبر ایک
میں آپ کو بتاتی ہوں
مجھے ایک بات اور کر لینے دیں دوسری بات یہ ہے کہ پھر پلٹ کے پوچھتے بھی نہیں ہیں بلکہ پھر یہ وی آئی پی ہو جاتے ہیں ہر میں ہر
نہیں وہ پھر شادیاں صرف
گیدرنگ میں جو ہے وہ شادیاں بھی وہ بھی پروٹوکول کے ساتھ اٹینڈ کرنے کا شوق ہے یہ نہیں ہوتا اب میں آپ کو بتاؤں ایڈم آپ کے ملٹن
بہت کمال
ڈاؤن بالکل ڈاؤن ٹو ارتھ اور اس نے پتا کیا کہا اس نے کہا مجھے ہفتے میں چھ دن بریانی کھانے کو مجھ سے بات ہوئی میں نے انٹرویو کیا اس کو اس نے کہا جی چھ دن اگر پاکستانی بریانی اور سموسے مل جائے نا تو مجھے چھ دن تک جو ہے کسی اور کھانے کی پرواہ نہیں آئی نو اٹس اے پولیٹیکل پلوائے اٹ ایون میڈ می ٹو یو نو میڈ می ہیپی آلسو تو یہ کہ ہمارے جتنے مطلب کہ یہ جو ہیں لوگ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا کوئی ایسا اچھا بھائی یہ نہیں ہے ان سے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں بعد میں ہوتا ہم لوگ خوشامد میں لگ جاتے ہیں بڑے لوگ ہیں دے آر پارٹ آف اوور کمیونٹی
ایگزیکٹلی میں یہاں پہ ایک اور شیئر کرنا چاہتی ہوں میرا اپنا بیٹا مجھے آج کہنے لگا کہ آئی ایم ویری سیڈ اینڈ آئی ایم ویری سرپرائزڈ آل دیز ممبر پارلیمنٹس خاص طور پہ ہماری اپنی ایتھنیسٹی کے ہی سیڈ دا اونلی ٹائم وین آئی لک ایٹ دیم دے کم ٹو دا مسجد اینڈ دے کم ٹو دا مسجد فار دا سیک آف ووٹ اگر میرا بچہ یہ سوچتا تو یقیناً آپ کے بچے بھی یہ سوچتے ہوں ڈیفینیٹلی سوچتے ہوں گے اٹ از سم تھنگ آف گریٹ کنسرن عظیم میاں صاحب میرے ساتھ ہیں عظیم میاں صاحب جنگ گروپ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں ون آف دا پائنیئرز ان دا جنگ گروپ اینڈ ہی نیور چینج ہز پلیٹ فارم ہی از ود دا جنگ گروپ فرام دا ڈے ون ہی از اے بیورو چیف آف جنگ ان امیرکا
I'm bureau chief of USA and Canada and United Nations. So three balls are in my
in your basket.
جو آپ کی اطلاع کے لیے میں نے کہا میں آپ کو اپڈیٹ کر دوں
میں تو نالائق انسان
نہیں نالائق میں عاجز آدمی ہوں
یو ایس اے کینیڈا اینڈ یوناٹیڈ نیشنز کو ظاہر ہے پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں بہت سارے لیڈر سے جو بات ہوتی ہے ان انٹرویوز کے گفتگو کو بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو عظیم میاں صاحب اس وقت میرے ساتھ ہیں آن دا ادر لائن آئی ہیو اے ونڈرفل پرسن اینڈ اس انسان نے بھی پیسے کے لحاظ سے سمجھ لیں کمیونٹی کے لحاظ سے کمیونٹی امپاورمنٹ میں بڑا رول پلے کیا سٹی اسکیپ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں عدنان بشیر ان کا نام ہے عدنان السلام علیکم ہاؤ آر یو
آئی ایم گڈ بابا جی آپ کیسے ہیں آئی ایم گڈ
اوکے کتنا اچھا ہوتا کہ اسکائپ پہ آتے میاں صاحب دیکھ رہے ہیں کہ کون عدنان ہے تو اگے بھی باجی نظر آ رہی
इनका जी छोटा भाई हूँ, बाकी दैट्स ऑल माय इंट्रोडक्शन।
आई अंडरस्टैंड कि चाहे वो क्या है हमारी मिनिस्टर जो है जूली हो, चाहे हमारे इमिग्रेशन मिनिस्टर हो, सारे के सारे इमरान की जेब में है। बल्कि एक तो अपने किचन मेलनी जूली अगर अपने वो किचन में भी खड़ी हो तो वो इमरान अदनान का टेलीफोन अटेंड कर लेती हैं।
ना 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 ना, ना ऐसी कोई बात नहीं। मैं आई हैवेंट एक्चुअली मेलनी को तो मैं बड़े सालों से शायद नहीं मिला का, बड़ा टाइम हो गया मेरी मतलब आए।
अच्छा फिर कौन? नहीं नहीं, आपके ताल्लुकात तो हैं, करीबी ताल्लुकात हैं। एनीवेज
यार आई नो ऑब्वियसली नंबर ऑफ देम, बट वो मतलब इत्तेफाक से, ये नहीं है कि कोई मेरा कोई वो है। आपको पता है पॉलिटिक्स से मेरा कोई लेना देना है नहीं है।
नहीं नहीं, डर गया ना।
नहीं नहीं नहीं, डरने वाली क्या बात है इसमें? नहीं नहीं नहीं, डरने वाली आरफा भाई जी, मैंने तो कोई मुझे आज कोई बात कर रहा था तो डर, मुझे एक कंजर्वेटिव कैंडिडेट था कहता कि जी हम जीत जाएंगे रात को, आपने मैं मुबारकबाद देनी है। मैंने कहा नो प्रॉब्लम। कहता आपने ऑफिस आना, मैंने कहा आ जाऊंगा। कहा हम तस्वीर लेंगे, मैंने कहा ले लेना। कहता हम लगाएंगे, तो मैंने कहा यार मैं किसी से लेता देता कोई नहीं, मुझे कोई डर नहीं है, यहाँ पर खड़ा होऊंगा खड़ा होऊंगा। जानने वाला था तो वो कोई ऐसा मसला नहीं।
अदनान, इस वक्त जो सूरत हाल है, व्हाट डू यू से अबाउट दी? देखिए जब तो डिफरेंस 42-43 तक था तो ये भी कहा जा रहा था कि लिबरल्स 190-91-92 सीट्स लेंगे, बट नाउ इट्स बीन सेड के 80 में से लेके 86 तक सीटें लेंगे। व्हाट डू यू से?
देखिए आरफाबा जी, मतलब जो पोज ऑन एवरेज है वो 4% अपार्ट, राइट? जो 4% अपार्ट नेशनली होते हैं ना, तो दैट विल, अब जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, के पिछले दोनों इलेक्शन में कंजर्वेटिव वोट लिबरल से ज्यादा पड़ा है। सो बोथ टाइम एरन एंड टूल
पॉपुलर वोट जो है वो कंजर्वेटिव ने लिया।
हाँ राइट, दोनों लास्ट इलेक्शन है, उसके बावजूद क्योंकि उनका वोट इज वो द टर्म इज कॉल्ड इनएफिशिएंट, राइट? क्योंकि वो अल्बर्टा वगैरह में उनकी सपोर्ट इतनी ज्यादा है कि वो मैसिव मार्जिन से जीतते हैं, तो वो नेशनली ऑब्वियसली नंबर में ट्रांसलेट हो जाता है, बट दे गॉट लॉट लेस सीट्स, राइट? इसी वजह से वो लास्ट दोनों गवर्नमेंट लिबरल्स ने बनाई थी। तो जहां पर लिबरल्स आके हैं तो ऑफकोर्स आई मीन जो अगर पोल्स आर राइट, विच मोस्ट लाइकली दे आर राइट, तो उस हिसाब से तो आई मीन देयर इन मेजोरिटी टेरिटरीज।
अदनान, एक चीज मेरे दिमाग में आ रही है कि अमेरिका के भी इलेक्शन को अगर आप देखते हैं तो जो चेंज आया है ये डेमोग्राफिक्स में जो चेंज है, जिसमें इमिग्रेंट्स और पीपल मूविंग फ्रॉम वन प्रोविंस टू एथनिक कम्युनिटी मूव करती है, दैट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग अ लॉट टूवर्ड्स द चेंज। अभी जब आपने कहा पिछले दो इलेक्शंस को भी आपने मेंशन किया कि कंजर्वेटिव ने पॉपुलर वोट बहुत लिया, यानी नंबर, जैसे डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि उनको नंबर ऑफ वोट्स ज्यादा मिले, डू यू थिंक कि ये पोलराइजेशन इन द लॉन्ग रन करेगी? ये क्योंकि ये वो इलाके हैं जहां गोरा 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 बैठा हुआ है, एंड डू यू थिंक कि दिस इज गोइंग, इट्स अ सीरियस 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 इशू? What do you say about that? और मैं अजीमिया साहब से भी इस पे पॉइंट लूंगी।
लेकिन बात यह है कि मैं, लेकिन ये एक बड़ी सब्जेक्टिव सी डिस्कशन हो जाती है, मगर देखिए जो एक चीज को जिसके हमें आई गेस मद्देनजर रखना चाहिए कि एक रूल है, एक लॉ है, ठीक है, जो खुद सिस्टम ने बनाया हुआ है, जो पार्लियामेंट ने बनाया हुआ है, ठीक है। गम ये आज से तो नहीं है ना, ये वाला ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, राइट? ये तो मतलब आई मीन 100 और मुझे सही टू बी ऑनेस्ट पता भी नहीं है, बट इसमें तो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट्स भी आई हैं, लिबरल गवर्नमेंट्स भी आई हैं, हर इनके पास अपॉर्चुनिटी थी इनको चेंज करने की, तो नहीं किया तो दैट मीन्स दैट्स हाउ व्हाट द कंट्री एक्सेप्टेड। तो ये दिस इज द रूल ऑफ द लॉ। अब आपने अगर उसका तो सिंपल सा जवाब होता है, अगर मेजोरिटी उसके साथ एग्री नहीं करती तो पार्लियामेंट को उसको चेंज कर देना चाहिए, मगर आज तक किसी ने ये बात नहीं की है तो चेंज नहीं हुई है, तो दैट मींस के बोथ पार्टीज एंड द मेजोरिटी ऑफ द इलेक्ट्रेट इज हैप्पी विद द सिस्टम, राइट? अब उस वक्त उसको इश्यू बनाना मेरी नजर में कि जब आपका रिजल्ट आपके मतलब का नहीं आया, तो आई थिंक दैट इज लाइक बींग सावर ग्रे।
नहीं नहीं, अभी तो रिजल्ट आए भी नहीं है, बट दोनों
नहीं नहीं
बिफोर दैट।
नहीं नहीं, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि अब आज अगले
अभी तो रिजल्ट नहीं आए कहीं के भी नहीं।
नहीं नहीं, मैं मेरा कहने का मकसद ये कि इस इलेक्शन में या प्रीवियस इलेक्शन में अगर ऐसी बात हुई है तो जब आपके फेवर में रिजल्ट नहीं आया तो आप वरना मैं तो देखे ना, ये सेम ही सिस्टम था जिसके थ्रू हार्पर भी जीता था, राइट? ये सेम ही सिस्टम था जिसके थ्रू कंजर्वेटिव की 10 साल की ऑलमोस्ट गवर्नमेंट रही है, राइट? उससे पहले ब्रायन मनरोनी की मैसिव मेजोरिटी थी ना. तो दिस सिस्टम इज व्हाट अ कैनेडियन हैज एक्सेप्टेड एंड दिस इज अ सिस्टम विच अ कैनेडियन हैज पुट इनटू प्लेस.
अच्छा, एक सवाल मेरे दिमाग में है. कहते हैं कि जाहिर है इस वक्त लिबरल का पलड़ा भारी नजर आ रहा है. अगर इमिग्रेशन के हवाले से जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, वो कहते हैं कि घरों का बहरान जो है वो वक्त के साथ साथ बढ़ता चला जाएगा. 2001 से लेके 2015 तक की अगर हम बात करते हैं तो हमारी आबादी में जो सालाना औसत इजाफा हुआ था वो तकरीबन 3,20,000 का, दैट इज फ्रॉम 2001 टिल 2015. सो इन 1 टिल 15 से इन 15 ईयर्स 3,20,000 आबादी का इजाफा, जिसमें नए बच्चे यहां भी पैदा हुए, कुछ इमिग्रेंट्स भी आए. वेयर एज 2016 से लेके 2023, विच इज अराउंड 6-7 ईयर्स, इसमें ऑलमोस्ट डबल इजाफा हुआ है, विच इज आबादी की शराब बढ़कर 6,12,000 हो गई है. ठीक, विच हैज मेड मैनी प्रॉब्लम्स, जो लोगों के लिए इमिग्रेशन एक तलख तजर्बा भी हो गया. डू यू थिंक के अगर मार्क कार्नी इंशाल्लाह, जैसे आप कहते हैं और मैं ये कहती हूं कि जो भी गवर्नमेंट आए मेजोरिटी में वो गवर्नमेंट आनी चाहिए, तो व्हाट यू थिंक के उन्होंने कोई खास कैप लगाने का भी जिक्र किया तो नहीं है, मगर लिबरल के ही जो मार्क मिलर थे उनके जमाने में औसत आबादी का 7.4% इमिग्रेंट्स आया था. तो व्हाट डू यू से नाउ?
सो आरफा भाजी, सो आई मीन आपके क्वेश्चन में ना बहुत मल्टीपल क्वेश्चन इन माय माइंड, मैं आई ट्राई टू आंसर. मल फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताऊंगा कि आई रिमेम्बर रीडिंग अ स्टडी बैक ऑलमोस्ट प्रोबली 20 ईयर्स अगो, ठीक है, हार्वर्ड के दो प्रोफेसर की स्टडी थी ऑन कैनेडियन पॉपुलेशन, ठीक है. तो उस एंड आई मतलब आई एम श्योर आई कैन फाइंड इट समवेयर, ये मतलब कम से कम 20 साल पुरानी बात होगी. उस वक्त जो स्टडी थी उसकी आर्गुमेंट ही ये थी, ये हार्वर्ड के लेक्चर वेरी टू सीनियर प्रोफेसर, कि कैनेडा की जो पॉपुलेशन जिस हिसाब से एज होगी तो कैनेडा को रफली अबाउट 500,000 इमिग्रेंट जो है चाहिए होंगे टू सस्टेन ग्रोथ, ठीक है. तो जहां तक इमिग्रेशन के टारगेट्स का ताल्लुक है, आई डोंट थिंक सो कि वो और वो एक ग्रेजुअली बढ़े हैं ऐसा ऐसा करके. आई एम श्योर आफ्टर ऑल या आखिर में एक बड़ा एक फीलिंग सी क्रिएट हो गई है, तो वो कंट्री की ग्रोथ के लिए वो नंबर्स नेसेसरी हैं. हाँ, उसमें जो इश्यूज आए हैं वो ये है कि भी जो आपने जब लोगों को लेके आना होता है तो आपने उनको इंटीग्रेट भी करना होता है, तो इंटीग्रेशन के लिए देयर हैजंट बीन इनफ एफर्ट पुट इन माय ओपिनियन, ठीक है. और एनदर जो मेरे हिसाब से एक्चुअली उसमें जो ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है इज नॉट द नंबर ऑफ इमिग्रेंट, बट यू नो आई एम देखिंग आई एम एन इमिग्रेंट माई सेल्फ, आप इमिग्रेंट हैं, तो आई थिंक दिस इज द ग्रेट थिंग अबाउट कैनेडा टू बी एबल टू ब्रिंग एन इमिग्रेंट. एंड मगर मेरे हिसाब से जो पिछले 4-5 सालों में जिस टाइप ऑफ इमिग्रेंट आए हैं दैट वॉज द रॉन्ग टाइप फॉर द कंट्री, ठीक है. तो मेरे ख्याल में इट्स नॉट एन इश्यू अबाउट द नंबर ऑफ इमिग्रेंट, अगर आप मेरी ओपिनियन लें, is that probably the type of immigration over the last few years which I think needs to be corrected.
Was the reason, what was the reason that they could not do the due diligence while bringing people from abroad? What was the reason?
देखिए वो अगेन वो एक बड़ी, मैं पहले आपके बाकी सवालों का जवाब दे लूं, देन वी कैन कम टू दिस, राइट. मगर आपने क्योंकि इसके साथ एक टाई अप किया था विच वॉज अबाउट हाउसिंग एंड अफोर्डेबिलिटी, जो कि नाउ दैट इज माई फील्ड. ये बाकी चीजें तो सिर्फ इंटरेस्ट वाली बात है ना, पॉलिटिक्स इमिग्रेशन दैट्स नॉट माई फील्ड. आई अंडरस्टैंड दैट. तो जो अफोर्डेबिलिटी इशू है दैट हैज बीन गोइंग कॉन्स्टेंट सिंस एटलीस्ट 1996, जिसमें लिबरल गवर्नमेंट्स भी आई हैं, कंजर्वेटिव गवर्नमेंट्स भी आई हैं और दोबारा लिबरल गवर्नमेंट्स भी आई हैं. और 40 भी आप मुझसे बात करें हाउसिंग नीड्स को एड्रेस करने के लिए किसी गवर्नमेंट ने काम नहीं किया कोई, ना पिछले 10 सालों में या ना उससे पहले उसके पिछले 10 सालों में हुआ. तो आप मुझसे ये पूछें कि भी उसमें किसका कसूर है, एवरीबडी इज इन्वॉल्व इन इट, एवरी लेवल ऑफ गवर्नमेंट.
ऑल पॉलिटिशियंस आर इक्वल?
नहीं, क्योंकि आप मुझे ये याद है कि जब हम 2010 में भी बात करते थे ना कि डाउन टाउन में ये कॉन्डो इतने महंगे हो गए, तो उस वक्त भी हमें लगता था जितने महंगे कैसे होंगे, इसमें कौन रहेगा। वो 11 में भी बढ़ते गए, 12 में भी बढ़ते, 13 में, 14 गए, 14, 15, ये सारे कंजर्वेटिव के साथ थे। उसके बाद नई गवर्नमेंट का टाइम शुरू हुआ, उसमें भी ये काम होता रहा, ठीक है। तो ये कोई एक, इसमें एक बंदे का या एक गवर्नमेंट का या एक पार्टी का कसूर नहीं है, इसमें फेडरल गवर्नमेंट्स भी हैं, इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने भी नहीं काम किया, इसमें म्यूनिसिपल गवर्नमेंट्स के भी इश्यूज हैं। दीज आर फेलियर्स ऑन थ्री लेवल ऑफ गवर्नमेंट इफ यू आस्क मी। पहले आप अगर आप मुझसे पूछें, पहले बात शुरू होती है म्यूनिसिपल गवर्नमेंट से, इट वॉज टू स्लो टू अप्रूव प्रोजेक्ट्स, राइट। वो एक ब्यूरोक्रेटिक सा सेटअप है, वेरी इनएफिशियंट इफ यू आस्क मी इन माई ओपिनियन, ठीक है। तो म्यूनिसिपैलिटीज में वो सबसे फेलियर होता है। उधर से आप निकलें तो आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो प्रोविंशियल डोमेन में आता है, तो वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के फेलियर है। आप उससे निकलें तो आपके पास लेबर रिसोर्स नहीं है जो फेडरल गवर्नमेंट के उसमें आते हैं, राइट। यू नो, अगर आप अगर हाउसिंग को देखें तो उसमें सबसे ज्यादा रोल म्यूनिसिपल गवर्नमेंट का, उसके बाद प्रोविंशियल का, उसके बाद फेडरल का है, बिकॉज फेडरल डजंट डू दिस डील विद दिस रेगुलरली, ठीक है। जैसे हेल्थ केयर प्रोविंस के पास है, फेडरल के पास नहीं है, राइट। तो ये जो एक्चुअल हाउसिंग है उसका पहला जो सिरा है वो म्यूनिसिपल के पास है।
थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अजीम मियां साहब जंग ग्रुप के साथ जैसे मैंने तारुफ कराया था, जी मियां साहब आप कुछ फरमाना
जी। बिल्कुल, वैसे एक बात है कि आपने जो सवालात उठाए हैं दे नीड वेरी कॉम्प्रिहेंसिव आंसर एंड आई मस्ट रियली यू नो थैंक टू अदनान बशीर साहब फॉर आंसरिंग ऑल दैट।
बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, मैं तो कहती हूँ इसको इलेक्शन में खड़ा करो, ये बहुत बड़ा सियासतदान है।
तो आप इसको जरा सा आगे लाए ना इनको, लेकिन मैं आपको बताऊं कि देखिए
ये दूसरों को हेल्प करते हैं,
दो चीजों की है जरूरत इस वक्त। जो एक जो पहला पॉइंट आपका है कि जो सिस्टम है इलेक्शन का और रिजल्ट का, वो दोनों जगह फॉल्टी है, ठीक है। क्योंकि यहां ये है कि अगर 63,000 वोट जो है वो इसके खिलाफ भी गए हैं तो मैं 42 कैंडिडेट हैं, 63 उनके दरमियान बट गए और मैंने जनाब अली मतलब 42,000 ले लिए तो आई विल बी गेट इलेक्टिंग। आपके सिस्टम में, कैनेडियन सिस्टम में ये चीज मौजूद है, कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, प्रोसीजर का हिस्सा है, ठीक है बिल्कुल। लेकिन कॉम ने इसको एक्सेप्ट किया है, दोनों पार्टियों ने भी
एक्सेप्ट किया है, मगर इन द लॉन्ग रन
बिल्कुल आप सही कह रही हैं। लेकिन आप ये देखें अमेरिका की तरफ देखिए, पिछली दफा मुतालबा ये हुआ है कि इलेक्टोरल कॉलेज जो है उसको एलिमिनेट किया जाए, क्योंकि वहां भी असूल जो है वो ये है कि माइनॉरिटी लीड्स द मेजॉरिटी, माइनॉरिटी रूल्स द मेजॉरिटी। आपके यहां भी ये सिलसिला जो है, लेकिन यह कि अभी तक दुनिया में मेरा ख्याल है स्विट्जरलैंड के अलावा किसी ने ऐसी कोई चीज डिवाइस नहीं की इलेक्शन प्रोसीजर में। या तो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, दे आर फॉलोइंग द ब्रिटिश राज, और नहीं तो जहां प्रेसिडेंशियल है वहां हमारे पास मॉडल जो है वो अमेरिका का है, जहां खुद जो यंग जनरेशन है वो तब्दीली का।
अमेरिका का अगला मॉडल तो बड़ा खतरनाक है। अदनान प्रेडिक्शन दीजिएगा, लिबरल्स की कितनी सीट होंगी?
180.
व्हाट डू यू से अबाउट एनडीपी?
एनडीपी का तो देखें आई
स्टेटस लूज करेंगे,
अगर लिबरल की 180 होंगे तो एनडीपी कैन नॉट बी मोर देन प्रोबेबली 10 समथिंग और सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट।
सो दिस मीन पार्टी स्टेटस लूज करेगी
प्रोबेबली, सीम्स लाइक इट अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि अगेन आई गेस इन माई ओपिनियन दिस वॉज अ स्ट्रेटेजिक ब्लंडर ऑन
जिगमीत सिंह
क्लियर पॉली ए पार्ट टू गो सो हार्ड अगेंस्ट दैम, आई मीन दे शुडंट हैव डन सो। इनमें मुझे तो उसकी आज तक लॉजिक ही नहीं समझ आई कि अ पार्टी विच इज हेल्पिंग यू वाई वुड यू गो अगेंस्ट दैम, बट दैट्स द रियलिटी।
बहुत शुक्रिया मियां साहब, आपकी क्या प्रेडिक्शन है जितना आप मेंबर्स से मिले हैं, जो आपने पढ़ा है देखा है?
मेरा ख्याल है कि जैसे लोगों का कहना और एक सर्वे भी मैंने देखा है, तो आई थिंक आई टेंड टू एग्री विद दैट कि इनको भी सिंगल मेजॉरिटी के करीब करीब अगर भी वोट मिल जाए तो लिबरल के लिए काफी है, लेकिन इनको हाँ इनको 204 भी नहीं मिलेंगे कि जिस तरह लैंडस्लाइड की जो प्रेडिक्शंस हो रही हैं।
वो 191 लैंडस्लाइड का जब जिक्र आया था ना, वो 191 से 193
तक आया था। मेरा ख्याल ये है कि 200
तो कभी भी नहीं,
मेरा ख्याल 185 भी अगर मिल जाए तो बड़ी बात है।
अच्छा 185
लिबरल के लिए।
बहुत शुक्रिया अदनान आपका, थैंक यू वेरी मच।
تھینک یو.
سٹیسکیپ سے عدنان بشیر میرے ساتھ تھے اور ان کی وائف جو ہیں انہوں نے اسپیشلائز کیا ہوا اسٹیم سیلز میں. ویری ویری فائن اینڈ ویری ایجوکیٹڈ لرنڈ گرل. تھینک یو ویری. ول ٹیک سم کمرشلز اینڈ کم بیک. پلیز اسٹے ٹیون. یو کین ڈیفینیٹلی گیو یور پروڈکشن. واٹ نمبرز ڈو یو ایکسپیکٹ؟ اسٹوڈیو نمبر از 416-620-1778.
یو آر لسننگ ٹو WTOR 770 AM Youngstown, Toronto.
ٹرکنگ والے ویرو دھیان نال سنو. ٹرک جدان دا بھی چلاونے ہو مینوئل جا آٹومیٹک کوئک ٹرک لیوب چیتے آہی نہ رکھیو. ٹرک دی بڑھیا سروس لئی کوئک ٹرک لیوب لو جی تیجی لوکیشن بھی کھولتی ہے ایگزٹ 579 فرام ہائی وے 401 ان ناپنی. آہو جی کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں. ڈرائیو تھرو فیسلٹی ایگزٹ 579 فرام ہائی وے 401 ان ناپنی. کوئک ٹرک لیوب دا ون اسٹاپ شاپ 519-622-0660 یا کوئک ٹرک لیوب .com. QTL بیکاز وی کیئر.
اپنی کمیونٹی دا سب تو بڑا ودیا کوالٹی والا تے سب تو پرانا سوڈی فرنیچر ہر گھر دی پہچان بن چکی ہے.
او پھر بنے بھی کیوں نہ, کیونکہ بیڈ روم سیٹ, سوفا سیٹ, میٹریسز, ڈائننگ ٹیبل, ڈیکوریٹو آئٹمز, گل کی جی سارے گھر دا فرنیچر ودیا کوالٹی تے ڈسکاؤنٹڈ پرائس تے مل جاندا. سوڈی فرنیچر تو 3 سال لئی نو بیاج.
142 کینیڈی روڈ, برامٹن, 9058747171.
شاپر رک جائیے تیار. لیساز کاسمیٹکس پھر سے لائے ہیں بڑے برانڈز کی بڑی سیونگز والی بڑی سیل.
جی ہاں, ورلڈ فیمس برانڈز کے پرفیومز, کاسمیٹکس اینڈ سکن کیئر, ہیلتھ اینڈ بیوٹی پروڈکٹس اور بھی بہت کچھ.
80% تک کی سیونگ آن یور فیوریٹ پریمیم برانڈز.
بس آپ کو آنا ہے لیساز کاسمیٹکس 135 کامرس ویلی ڈرائیو ایسٹ مارکم, جسٹ آف ہائی وے 404 اینڈ 407 اینڈ کلوز ٹو 401.